Genre. شكرا لك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور دعاؤں کے ساتھ اور ان آیات کی تلاوت کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. سورہ انعام کی آیات نمبر 59, 60, 61, 62, 59 سے لے کے 62 تک. ان کے ہم معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 3 میں سے. اور ان میں آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی پیج نمبر 350 کے اوپر، کہ یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو علم غیب کے بارے میں تھی اور علم شہادہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دو علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ایک علم جو ہے وہ علم غیب کہلاتا ہے، یعنی ان چیزوں کا علم جو کہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ موجود نہیں ہے، ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو وہ علم غیب کہلاتا ہے. اگر کسی اور کو اس کا علم کچھ حاصل ہو گیا تو وہ خود سے حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو وہ علم دیتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت اس کو علم دے دیتے ہیں تو پھر وہ اخبار الغیب کہلاتا ہے، انباء الغیب کہلاتا ہے. یہ دونوں لفظ استعمال سیم، مطلب یہی ہے، انباء الغیب یا اخبار الغیب. تو اب وہ غیب نہیں رہتا بلکہ غیب کی کوئی خبر ہو جاتی ہے جو اس تک پہنچی ہے. تو علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ علم الشہادہ ہے، یعنی جو چیزیں موجود ہیں ان کا حتمی علم اور علم محیط، ہر چیز کا، ہر ذرے کا علم، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزوں کا علم ہمارے پاس بھی ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے، لیکن علم محیط کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ بحث پوری کی پوری کمپلیٹ کر کے پھر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی تھی کہ اسی طرح بے شمار آیات، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات نقل کر کے فرمایا تھا، اسی طرح بے شمار آیات میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم، جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور جس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے، یا تمام کائنات کا علم محیط، صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے. کسی فرشتے یا رسول کے علم کو اسی طرح ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا، جیسے اللہ کا علم ہے ہر ذرہ کائنات پر محیط، وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے اور خدا تعالیٰ کے برابر قرار دے دینا ہے، جو بتصریح قرآن کریم شرک ہے. سورہ شعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے. جن خواتین نے جمعہ کا درس سنا تھا تو اس میں اور بھی اس کے اوپر مزید بات کی گئی تھی، تو یا تو اس کی ریکارڈنگ سن لیں جنہوں نے نہیں سنا تھا. اس میں کافی ساری اس پہ بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ صرف علم کے ایک صفت پہ، اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں، ٹھیک ہے. تو شرک صرف اس کو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ساری صفات میں کسی کو شریک ठहरा देना, तब वो शिर्क कहलाएगा? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की सिर्फ एक सिफत में भी किसी को शरीक कर दिया कि उसके पास भी वो एक सिफत ऐसी है जैसी अल्लाह के पास है, तो वो भी शिर्क कहलाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक सिफत में भी अल्लाह ताला के साथ शरीक कर देना शिर्क कहलाता है। सारी सिफात में अल्लाह के साथ शरीक कर देना तो शिर्क होगा ही, वो तो 100% शिर्क होगा, लेकिन एक सिफत में भी कर देना वो भी शिर्क कहलाएगा। और वो उसी दर्जे का शिर्क कहलाएगा जिस दर्जे का जो है वो ईसाइयों का शिर्क है। ये ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा का दर्जा दे दिया। तो जो मुशरकीन मक्का थे वो भी यही किया करते थे। ठीक है, तो सूरह शुरा में शिर्क की यही हकीकत बयान फरमाई गई है, तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लाल मुबीन इन नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन। यानी कयामत के दिन मुशरकीन कहेंगे कि बखुदा हम सख्त गुमराही में थे कि तुमको, यानी बुतों को, यानी अपने बुतों से मुखातब होकर ये कह रहे होंगे कयामत के दिन कि हम तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर करते थे। तो वो लोग भी अपने बुतों को हर सिफत में अल्लाह ताला का बराबर नहीं करार दिया करते थे, बल्कि किसी एक सिफत में किसी एक बुत को अल्लाह का बराबर करार देते थे, किसी दूसरी सिफत में किसी दूसरे बुत को अल्लाह का बराबर करार देते थे, या अल्लाह का शरीक पार्टनर करार देते थे। बराबर से मतलब ये भी नहीं है कि 100% इक्वल शेयर, कि 50% इस बुत के पास है और 50% अल्लाह ताला के पास है, ये वाला काम या ये वाली कुदरत 50-50 डिवाइड हुई भी अल्लाह और उसके नाउज़ुबिल्लाह बुत के दरमियान, बल्कि नहीं, 1% भी बुत के पास वैसी ही सिफत है जैसे कि 99% अल्लाह ताला के पास ये वाली सिफत है, तो भी ये शिर्क ही कहलाएगा। ये इसकी मिसाल पहले भी हम कई दफा दे चुके हैं कि जैसे कि बिजनेस के अंदर पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, तो कोई पार्टनर जिसके पास 99% शेयर है बिजनेस का, वो भी पार्टनर ही कहलाता है उस बिजनेस के अंदर, और किसी के पास सिर्फ 1% शेयर है बिजनेस का, तो वो भी पार्टनर ही कहलाता है बिजनेस का। तो इवन अगर किसी बुत को सिर्फ 1% शेयर भी दे दिया जाए कि इसके पास ये वाली अथॉरिटी 1% है और बाकी 99% अल्लाह के पास है, ये भी शिर्क ही है, ये भी पार्टनरशिप ही है। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर जिस तरह पार्टनर होते हैं, उसी तरह से कुदरत के अंदर पार्टनर भी पार्टनर ही होता है। ठीक है, अब फर्क क्या है फिर हम में और अल्लाह ताला में? या मोमिन जो बात कहता है किसी के पास कोई अथॉरिटी है तो उसके ये बात कहने में, और मुशरिकीन के ये बात कहने में फर्क क्या है? फर्क ये है कि मोमिन जो है ना वो पार्टनर नहीं कहता, बल्कि मोमिन कहता है कि ये एक टेम्पररी, अल्लाह ताला ने ये इख्तियार किसी को दिया है टेम्पररीली, लेकिन ये इख्तियार इसके पास से एक तो खत्म हो जाने वाला है, इसके पास हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने दे नहीं दिया इसको ये इख्तियार, ठीक है, बल्कि एक तो ये खत्म हो जाएगा, मौत आएगी खत्म हो जाएगा इसका इख्तियार, और दूसरा ये कि ये इख्तियार जो है ये पीछे अल्लाह के कंट्रोल में ही है, ये इसके कंट्रोल में नहीं है, ये तो सिर्फ एक सबब है। ठीक है, जैसे किसी के पास जो है वो खाना खिलाने का इख्तियार अल्लाह ने दे दिया, ठीक है ना, अब वो शख्स जो है वो अपने हाथों से किसी को खाना खिलाता है, ठीक है, या वो खाना उगाता है जमीन में और फिर उसमें से जो है वो रोटी बनाता है और फिर हाथ से खाना खिला देता है, तो ये जो इख्तियार उसको दिया है अल्लाह ताला ने खाना खिलाने का, तो ये इख्तियार जो है ये अल्लाह ताला के जैसा इख्तियार नहीं है, बल्कि ये ऐसा इख्तियार है कि ये थोड़ा सा ये काम कर सकता है जब तक इसके पास ताकत है, ठीक है, जब तक इसके पास जिंदगी है तब तक तो ये काम कर सकता है, लेकिन जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो उसके पास ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ एक सबब है खाना खिलाने का, अगर पीछे से अल्लाह ताला जो है वो इसको रिस्क ना दें, खाना खिलाने वाले को अल्लाह ताला रिस्क ना दें, अगर इसको जो है वो इसके जमीन के अंदर अल्लाह ताला पौधा उगने ही ना दें, तो ये खाना नहीं खिला सकता। ठीक है, हत्ता के इसको इख्तियार देना और इसको रिस्क देना तो एक बात है,
ये किसी के मुंह में खाना डाल दे, लेकिन अगर अल्लाह ताला की इजाजत ना हो कि वो उस खाने को चिबा करके अपने पेट के अंदर डाले और फिर उसको उसका पेट उसको हजम कर ले, तो वो खाने वाला भी खाना खा नहीं सकता इसका खिलाया हुआ, जब तक अल्लाह ताला उसको इजाजत ना दें, उसके पेट की अंतड़ियों को इजाजत ना दें कि वो उस खाने को हजम करें, वो खाना नहीं खा सकता। ठीक है, तो ये फर्क है ना काफिर के शरीक ठहराने में किसी को अल्लाह ताला का, और मोमिन का इस बात कहने में कि जी हाँ ये फलाना शख्स जो है ये खाना खिला रहा है, ये खाना खिला रहा है। तो खाना खिलाने का जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्लाह की तरह खाना खिला रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के दिए हुए किसी मुख्तसर से नाकिस से इख्तियार के तहत ये खाना खिलाने का काम कर रहा है बतौर सबब के, और कुछ नहीं। इसके बारे में आखिरी बात जो पिछली क्लास के अंदर की थी वो ये थी कि ये जो अल्लाह ताला के जैसा कोई दर्जा दे देना है ना किसी को, किसी इंसान को, तो ये जो है ये गुलू कहलाता है। ठीक है, गुलू यानी हद से आगे बढ़ जाना, और ये गुलू जो होता है ना ये एक तरह की यानी दीनी बैकग्राउंड के साथ ये वाली चीज चलती है। ठीक है, तो ईसाई जब ईसा अलैहि सलाम का भी यहाँ पे मिसाल दी है मूसा शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम जो हैं ये कोई मादियत के दुनिया के चैंपियन नहीं थे, ये मादियत की दुनिया के चैंपियन नहीं थे कि इनके पास मादियत की बड़ी बड़ी ताकतें थीं, बल्कि ये रूहानियत की दुनिया के चैंपियन थे। मादियत की इनको अल्लाह ताला ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक कि भाई वो थोड़ी देर के लिए मुर्दे को जिंदा कर देना, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को कहा कुम बिइज़्निल्लाह तो वो खड़ा हो गया। ठीक है, या कोढ़ी जो होते थे जिनको लेप्रसी का मर्ज होता था, तो उनको थोड़ी देर के लिए जो है वो शिफा मिल जाए, तो ये तो मादियत की दुनिया की चीजें थी, लेकिन अदरवाइज ईसा अलैहिस्सलाम तो रूहानियत की दुनिया के 100% रूहानियत उनके अंदर ना, मादियत तो ईसा अलैहि सलाम के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर थी, तकरीबन ना होने के बराबर थी। तो वो तो खालिसतन एक दीनी शख्सियत थे, तो उनमें हुलू किया गया और उनको खुदा के बराबर करार देना शुरू कर दिया कि खुदा का बेटा मान लिया। ठीक है, क्योंकि बेटा जो होता है वो बाप का वारिस होता है, बाप की जैसी सफात बेटे के अंदर जेनेटिकली आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो हुलू होता है ये फिर उमूमी तौर पर क्या होता है, ये दीन के रास्ते में हो रहा होता है, और इसको फिर शैतान जो है वो एक्सप्लॉइट करता है और इसी को आगे बढ़ा करके जो है ना वो शिर्क की शक्ल दे देता है, गुलू को शिर्क की शक्ल दे देता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में क्या बात समझाई थी कि हम जिस दौर जिस जमाने से गुजर रहे हैं ये फितने दज्जाल का जमाना है, और फितने दज्जाल भी क्या है, ये दीनदारी में गुलू, दीनदारी में गुलू की शक्ल है। ठीक है, क्योंकि दज्जाल जो आएगा तो उसके बहुत सारे चीजें जो पता चलती हैं हदीस मुबारक से, वो ये पता चलती हैं कि वो कोई खालिसतन मादी शख्सियत नहीं होगी कि जिसका जो है वो दीनी शक्ल व सूरत कोई नहीं होगी उसकी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गोया के एक पॉप स्टार की शक्ल का होगा, या क्रिकेट स्टार की कोई शक्ल का होगा, या कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टाइप की कोई चीज होगी जो कि बिल्कुल मादियत परस्ती वाली शक्ल नजर आती है, बल्कि नहीं, उसकी शक्ल जो है वो दीनदारी वाली शक्ल होगी। ठीक है, और वो रूहानियत को जो है ना वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि मैं हूं रूहानियत का चैंपियन। ठीक है, और लोग उसको रूहानियत का ही चैंपियन तस्लीम करेंगे। इसी वजह से दज्जाल जो है एक ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन वो भी चूंकि मजमून से रिलेटेड ही है, इस वजह से उससे जो है वो हम इस्तदलाल करते हैं कि यानी दूसरी अहदीस से उसको तकवीत मिलती है उस ज़ईफ़ हदीस को। ठीक है, जैसे कि शब बरात वाली हदीस है ना, सारी की सारी ज़ईफ़ हदीस हैं, लेकिन उनको तकवीत मिलती है दूसरी अहदीस से, तो इस तरह से जो है वो ज़ईफ़ हदीसें भी जो होती हैं वो भी मजबूत बन जाती हैं। ठीक है, तो लिगैरी ही उसको कहते हैं कि भाई किसी गैर की वजह से आपको तकवीत मिल गई हालांकि आप खुद कमजोर थे। तो इसी तरीके से एक एक हदीस से तो सराहतन ये बात पता चलती है कि ये जो दज्जाल आएगा तो ये अपने आप को लोगों का दीनी मुक्तदा बना करके, पेश करेगा और ये दावा भी करेगा, दीनी दावा करेगा, और लोग उसको अपना मुक्तदा और पेशवा बना लेंगे, लोग उसको अपना मुक्तदा और पेशवा बना लेंगे, उसको उसकी इत्तबा करना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह किसी दीनदार की इत्तबा की जाती है, किसी इमाम की इत्तबा की जाती है, इस तरह उसकी इत्तबा शुरू हो जाएगी, और फिर वो इससे फायदा उठाते हुए आगे बढ़ेगा और वो ईसा, वो मसीहियत का दावा करेगा, ईसा अलैहि सलाम होने का दावा करेगा कि मैं ईसा हूं, मैं मसीह हूं। ठीक है, तो लोग जो हैं जो उसको पहले से इत्तबा कर रहे होंगे, वो लोग उनमें से अक्सर लोग यानी जो अपना ईमान गंवा चुके होंगे उस वक्त तक, तो वो उसकी मसीहियत के दावे को भी कबूल कर लेंगे, ठीक है, और उसको मसीह मान लेंगे, उसको मसीह मान लेंगे। ठीक है, तो मसीह कौन है? मसीह तो रूहानियत के फील्ड के चैंपियन है ना, तो उसको रूहानियत की फील्ड का चैंपियन मान लेंगे, और फिर आखिर में जा करके वो खुदा होने का दावा करेगा, आखिर में जाके वो खुदा होने का दावा करेगा, यानी कि रूहानियत की जो बिल्कुल सोर्स है खुदा अल्लाह ताला से, कुल रूह मिन अमरे रब्बी, अल्लाह ताला से ही सारी की सारी रूहानियत हमें मिलती है ना। ठीक है, कुरान मजीद पे फरमाते हैं रूह क्या है, रूहानियत जिसके अंदर होती है, रूह क्या चीज है, रूहानियत का पूरा जिस्म है, मुजस्सम रूहानियत इज इक्वल टू रूह। ठीक है, यानी उसका अपना कोई फिजिकल जिस्म नहीं है, रूह ही उसका जिस्म है, तो ये कहाँ से आया, ये अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, तो उसको लोग खुदा मान लेंगे, इतनी रूहानियत वो दिखाएगा कि लोग उसको खुदा मान लेंगे, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो जाएगा, लोग कैसे ऐसे अंधे हो जाएंगे कि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये असल में मसीहा नहीं है या ये असल में खुदा नहीं है, ये कैसे हो जाएगा? वो उसी वक्त होगा कि जब लोगों का अपना ईमान खत्म हो चुका होगा, लोगों का अपना ईमान खत्म हो चुका होगा, तो इस वजह से वो उसको मसीह भी मान लेंगे और उसके जो है वो खुदाई के दावे को भी मान लेंगे। ठीक है, जिसका भी ईमान उस वक्त सलामत होगा वो उसको नहीं मानेगा, राइट, वो उसको खुदा नहीं मानेगा, जिसका ईमान सलामत होगा वो उसको खुदा नहीं मानेगा, लेकिन जिसका ईमान सलामत नहीं होगा वो उसको खुदा भी मान लेगा और जो है वो उससे पहले वाला दर्जा जो है वो उसे और तफसील है उसके अंदर, खैर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहरहाल, तो गुलू से बचना है, हमने गुलू से बचना है, तो गुलू से बचने का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को अगर सुनना है, किसी की इत्तेबा करनी है, किसी से अपना दीन हासिल करना है, तो वो हम शरीयत की मेयार के ऊपर उसको परखें, शरीयत के मेयार के ऊपर, अगर शरीयत वाला है, ठीक है, तो फिर हम उससे अपना दीन हासिल करेंगे, हम उससे इल्म हासिल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि शरीयत वाला है कि नहीं है? ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कैसे पता चलेगा अवामुन नास को कि कोई साहब जो माशाल्लाह दीन की बातें कर रहे हैं तो वो शरीयत वाले हैं कि नहीं है, यानी शरीयत की इत्तबा करने वाले हैं या वो शरीयत के खिलाफ अमल करने वाले हैं, ये अवामुन नास को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसका सवाल हम आपसे करते हैं कि अवामुन नास को ये बात कैसे पता चलेगी कि जो साहब जो हैं रूहानियत की बातें कर रहे हैं, दीन की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, अब रूहानियत की बातें क्या होती हैं, अल्लाह ताला के तजल्लियात, फ्यूजात, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला का इश्क, राइट, और जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का इश्क, राइट, और जन्नत और जहन्नुम, और जो है वो और इस तरह की बेशुमार बातें, ठीक है ना, ये सब रूहानियत की बातें कहलाती हैं। तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि भाई ये शरीयत की पाबंदी भी करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो इसका सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, तो जवाब आने शुरू हुए हैं। किसी ने कहा कि सुन्नत के मुताबिक करने वाला सही होगा, आप वही तो पूछ रहे हैं भाई, शरीयत और सुन्नत जो है ना, ये आप एक ही चीज को समझें, इतना इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि सुन्नत कोई और चीज है जिससे पता चलेगा कि शरीयत वाला है कि नहीं है। आपके ख्याल में सुन्नत क्या चीज होती है? चेहरे पे दाढ़ी है तो दाढ़ी तो आज सभी लगाए हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही दाढ़ी वाला है कौन गलत दाढ़ी वाला है? तो सुन्नत से क्या मुराद है आपकी ना? ठीक है, शरीयत तो सुन्नत के पाबंद हों, तो वही तो आप सवाल कर रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा। आपसे मुराद अवाम, भाई हम अवाम को ये कह रहे हैं ना कि अवाम जो है वो किसी से रूहानियत सुनना ना शुरू कर दे, रूहानियत सीखना ना शुरू कर दे, जब तक कि वो उसको शरीयत के तराजू में ना तोल ले। तो अब दो सवाल उसमें होते हैं, यानी एक मेन सवाल तो यही है कि भी अवाम को पता कैसे चलेगा, क्योंकि अवाम तो अवाम है ना, तो अवाम को तो इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये शरीयत पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखते हैं तो क्या आपको पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? यूट्यूब पे आपने किसी से रूहानियत की बातें सुनी, ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो शरीयत पर हैं कि नहीं है? ठीक है ना, यूट्यूब पे उनकी जो वीडियो है वो दाढ़ी वाली वीडियो है, और साथ उन्होंने शायद सफेद सफेद जुब्बा भी पहना हुआ हो, सर पे टोपी भी पहनी हुई हो, या हो सकता है इमामा भी पहना हुआ हो। तो अब ये चार चीज़ें देख करके आपको पता चल गया कि वो शरीयत की पाबंदी करने वाले हैं। क्या ये चार चीज़ें शरीयत की पाबंदी बता देती हैं आपको कि दाढ़ी भी लगी हुई है, सर पे टोपी भी है, और बदन पे जो है वो कुर्ता भी है, तो इसका मतलब है कि ये शरीयत है। बस दैट्स इट, यही शरीयत है आपके नज़दीक। अवाम देखेंगे उलमाए हक की क्या की राय क्या है उनके बारे में, अवाम देखे कि उलमाए हक की राय क्या है उनके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उलमाए हक, तो जब उलमाए हक की राय उनके बारे में पूछ रहे हैं तो आप जो हैं वो फिर उलमाए हक को ही क्यों ना सुनना शुरू कर दें, आप उनको सुन ही क्यों रहे हैं? अगर आपको उलमाए हक की राय उनके बारे में पूछनी है तो आप जो है वो उलमाए हक को क्यों नहीं सुनते? ये कोई नई शख्सियत आई है, उनको आपने क्यों सुनना शुरू कर दिया? इल्म सीखना होगा, जाने इल्म सीखना होगा, तो फिर इल्म किससे सीखते हैं? किताबों से। इल्म भी तो उलमा से सीखते हैं ना। ठीक है, तो भाई इसकी दो दो ही सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि YouTube और इस तरह की जो है ना, जिनमें के आपको कुछ पता नहीं है कि उस बंदे की ज़िंदगी की क्या तफसीलात हैं, ठीक है ना, तो आप इस उधर से इल्म नहीं हासिल कर सकते। उधर से अगर आपने इल्म हासिल किया ना, ये रूहानियत की बातें सुननी शुरू करी ना, तो आपके बचने के बहुत कम इम्कान हैं। ठीक है, पहले तो आपको तहकीक करनी पड़ेगी कि फलाना शख्स जो है वो सही है कि नहीं है, वो उलमाए हक से तहकीक करनी पड़ेगी कम से कम, ठीक है ना, तो भाई आपको पर्सनली उनके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी, ये कहने का मकसद है। ठीक है, पर्सनल लेवल पे जाकर के आपको उनकी तहकीक करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर वो तहकीक में पूरे उतर जाएं, कामयाब हो जाएं, तब आप उनको सुन सकती हैं यूट्यूब से, वरना नहीं सुन सकती, वरना नहीं सुन सकती। ठीक है ना, कि बस बात अच्छी करते हैं इसलिए मैं सुनूंगी। अब जो है ना, वो आजकल एक एक जैसे एक साहब आए हुए, अब लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है ना, ठीक है, तो वो जो है ना वो पोनी बना करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, अब तो आजकल तो लंबी लंबी दाढ़ी वाले भी पोनी पोनी साथ बनाए हुए होते हैं सर के ऊपर, ठीक है ना, वो जो लड़कियों का औरतों का जोड़ा नहीं होता, जोड़ा जिसको हम मेरे मैं उसको पोनी कहता हूँ, ठीक है, तो वो लड़कियों का जोड़ा जो होता है ना वो उसने लगाया हुआ है, और आगे जो है वो दाढ़ी भी रखी हुई है, और क्या जबरदस्त रूहानियत की बातें कर रहे हैं, अखलाकियात की बातें कर रहे हैं, जन्नत जहन्नुम की बातें कर रहे हैं, अल्लाह की मार्फत की बातें कर रहे हैं, और लोग ना सिर्फ खुद सुनना शुरू कर देते हैं बल्कि अपने स्टेटस पे भी लगाना शुरू कर देते हैं, यानी दुनिया को भी सुनाना शुरू कर देते हैं, फ्री में उनके एडवर्टाइजमेंट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बात से मुतासर होकर के। ठीक है, इतनी भी नहीं देख रहे होते हैं कि भाई इस शख्स ने जो है वो औरत की मुशाबियत इख्तियार की हुई है, ये जोड़ा बांधना जो है ये कहाँ से आ गया मर्दों की सिफत, ठीक है, औरतों की मुशाबियत इख्तियार की हुई है जिसके ऊपर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है, ठीक है, लेकिन इसकी भी परवाह कोई नहीं कर रहा, और उसका स्टेटस जो है वो लगा लगा कर दीनदार औरतें, पर्दे, सो कॉल्ड पर्दे वाली औरतें जो है वो अपने स्टेटस के ऊपर ऐसे मर्द की जो है वो वीडियो लगाई हुई है। ठीक है। तो भाई ये जो तरीका है ना कि बात अच्छी थी इस वजह से मैं सुन रही हूँ, ये तरीका हमारे दीन में बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं। पहले बंदा देखो, ठीक है, पहले बंदा देखो, से मुराद शक्ल नहीं देखो उसकी, पहले बंदे के तफसीलात देखो। तो पर्सनल लेवल के ऊपर बंदे की तहकीक करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं, ठीक है। वरना वो शुरू में अच्छी अच्छी बातें कर भी रहा होगा ना, तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसके जरिए से आपको गुमराह कर देंगे, क्योंकि आपने तरीके को फॉलो नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये नहीं था कि किसी की भी अच्छी बात सुन करके उसको जो है वो सुनना शुरू कर दो, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को पेश किया, अपने जिंदगी की तफसीलात को पेश किया, फिर लोगों से तवक्को करी कि मेरी बात को मानो। ऐसे ही नहीं कि बस मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात अच्छी है इस वजह से बात को मान लो, नहीं, बल्कि पूरी अपनी यानी तफसील को पेश किया कि देखो तुम खुद कहते हो कि मैं सादिक हूं, तुम खुद कहते हो कि मैं अमीन हूं, तुमने देखा है, जब भी तुम कहते हो ना कि मैं सादिक और अमीन हूं, बगैर देखे कोई किसी को सादिक और अमीन कैसे कह सकता है, ठीक। और अपनी डीलिंग्स को पेश किया लोगों के सामने, फिर कहीं जाकर के लोगों से तवक्को करिए कि तुम जो है ना वो मेरी बात को मानो। सिर्फ मेरी बात को देख करके मेरी बात को नहीं मानो, बल्कि मुझे देख करके मेरी बात को मानो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए एक तो बात यह हो गई कि भाई बंदे की तफसील देखनी पड़ेगी आपको। आप ऐसे ही किसी की वीडियो देख करके, या किसी ने आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, किसी ने आपको जो है वो फलानी चीज फॉरवर्ड कर दी, और बगैर तहकीक के आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और दूसरों को भी उसकी दावत देनी शुरू कर दी, नहीं, यू हैव टू नो, आपको पहले तहकीक करनी होगी। और ये सब के ऊपर अप्लाई होता है, मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, ये इस फकीर के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये नहीं कि जी हमारे ऊपर नहीं, मुझे आप सुने तवक्को यानी एतमाद करके सुने और बाकियों की तहकीक करें, नहीं, मेरी भी तहकीक करें भाई, हमारी भी तहकीक करें, बगैर तहकीक के आप कैसे दीन देना शुरू कर सकती हैं किसी से, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अवाम जो है ना वो ये जो समझती है ना कि इल्म जो है ना ये तो बस उलमा की विरासत है, ठीक है, अब मैंने तो जाहिल ही रहना है, इल्म तो सारा आलिम के पास है और जो है वो बस मुझे खुद तो कुछ नहीं सीखना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जाहिल को बिल्कुल ही इल्म से छुट्टी दे दी गई है, ठीक है। जाहिल से मुराद यहाँ पर अवाम, कि अवाम को बिल्कुल ही ना इल्म से छुट्टी दे दी गई है कि हाँ भाई तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है इल्म हासिल करने की, सारा इल्म तो उलमा ने हासिल करना है, और फिर तुम उनसे बैठ करके रूहानियत सीखना शुरू कर दो बस। नहीं, बल्कि शरीयत के अहकाम का इल्म, जिसको के फराइज का इल्म कहा जाता है, ये हर मुसलमान के लिए हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान के लिए विदाउट एक्सेप्शन, राइट। ये जो हदीस मुबारक शायद आपने सुनी होगी, या कम से कम हमारी दीन एसेंशियल्स की जब आपको इंट्रोडक्शन भेजी जाती है, जब आप ज्वाइन करती हैं तो एक इंट्रोडक्शन मैसेज भेजा जाता है, तो उसके अंदर भी ये हदीस है जिसने लिखी हुई है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना यानी इल्म को हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। कौन सा वाला इल्म हासिल करना? तफसीली उलूम हासिल करना, जिसको कि इल्म फनून का इल्म, उसूल का इल्म, कवायद का इल्म, और जो है वो अरबी जुबान का इल्म, लुगत का इल्म, नहीं, वो फर्ज नहीं है हर मुसलमान के ऊपर। वो जो हासिल करता है उसको उलमा कहा जाता है, उसको आलिम कहा जाता है। लेकिन अवाम के ऊपर फर्ज इल्म हासिल करना फर्ज है, ठीक है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं ना उनका इल्म हासिल करना, जो इस बंदे के ऊपर अप्लाई होते हैं उनका इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, ठीक है। तो अब वो अपने अम्मा अब्बा से हासिल करें, अम्मा अब्बा ने हासिल नहीं किया तो भाई अब अम्मा अब्बा ने हासिल नहीं किया तो अब आप किसी और से हासिल करें, लेकिन अम्मा अब्बा को ये हासिल होना चाहिए ताकि वो अपनी औलाद को सिखाएं और औलाद अपने माँ बाप से सीखे, ठीक है ना। माँ बाप के बारे में तहकीक तो नहीं करनी पड़ेगी ना कि ये मेरे माँ बाप हैं कि नहीं है, वो तो माँ बाप हैं, तो भाई माँ बाप से फर्ज इल्म हासिल सीखना है, इल्म हासिल करना है, ठीक है। और अगर माँ बाप को नहीं पता तो फिर जो भी करीब तरीन जिसके बारे में आपको पहले से पता है उससे फर्ज इल्म हासिल करना है। ये फर्ज इल्म जो है ये अवाम के लिए फर्ज है हासिल करना, ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, उन लोगों को कैसे समझाना चाहिए जो बोलते हैं कि मैं सबसे पॉजिटिव्स लेती हूं। आप खुद तो पहले समझ रहे हैं ना बात को, लोगों की बात बाद में कीजिएगा, पहले अपनी बात खुद समझे बात को। सम पीपल फॉलो लेडीज ऑन यूट्यूब हाउ टू एक्सप्लेन देम। पर्दे के क्लास चल रही है ना जुम्मे को, वो बुध को, ठीक है, तो वो पर्दे के दलाइल सुने और फिर उन तक पहुंचा दिएगा कि भाई ये पर्दा क्या चीज होती है। जो पर्दे का हुक्म नहीं मान रहा हो तो फिर आप उससे कैसे दीन का इल्म हासिल कर रही है। ठीक है, आप पहले खुद तो बात को समझे ना, दूसरों को बाद में समझाइएगा। ठीक है, पहले खुद समझें बात को, और ये एज्यूम ना किया करें कि आपको पहले से बातें पता है, अब तो बस दूसरों को बताना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं इनका इल्म हर फर्द को हासिल करना है। तो जो फराइज हैं जिसमें कि हम समझते हैं सिर्फ नमाज और हज ज़कात है, नहीं, बल्कि पर्दा ये भी फर्ज है, और झूठ ना बोलना ये भी फर्ज है, गीबत ना करना ये भी फर्ज है। ठीक है, तो इनका इल्म जो है ना, ये उलमा ने हासिल नहीं करना, उलमा तो कर चुके हैं ये इल्म हासिल, ये तो अवाम ने हासिल करना है। अब जब ये इल्म हासिल हो गया आपको कि भाई गीबत क्या चीज होती है, गीबत से क्या कैसे बचना है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, ठीक है, इन अहकामात का इल्म हासिल हो गया, अब जो है ना वो आपको कोई गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई फलाने जो सो कॉल्ड रूहानी शख्सियत बैठी हुई है यूट्यूब के ऊपर, चाहे वो मर्द हो जो है, चाहे वो औरत हो, अगर वो पर्दे की खिलाफ वर्जी कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो उनसे रूहानियत नहीं लेनी है। ठीक है, अगर जो है वो म्यूजिक के साथ बैठे हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने रूहानियत नहीं लेनी है उनसे। ठीक है, और अगर जो है वो औरतों के इख्तलात में बैठे हुए हैं, ठीक है, औरतें भी सामने टांग फैला के बैठी हुई हैं जिस तरह के आजकल अमेरिका वगैरह वगैरह के अंदर, तो यही दीनी मजालिस ऐसी चल रही होती हैं, बहुत सारी, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी, ठीक है, जिसके अंदर के औरतें सामने बैठी हुई हैं टांगे फैला करके, इधर से जो है वो शेख साहब जो है वो दाढ़ी वाले शेख साहब और जुब्बा पहने वाले शेख साहब जो है वो माशाल्लाह मर्द औरतों के मखलूत इज्तिमा के अंदर जो है वो दीन की किताबें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अवाम को ये बात पता होनी फर्ज है कि ये दीन के अंदर हराम है, इस तरीके से दीन की कोई भी बात करना दीन के अंदर हराम है, तो अब आप उनसे बात दीन नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो गुलू से बचने का यही यही है, ये सारा मलबा उठा करके मौलवियों के ऊपर नहीं डाला जा सकता कि जी वही सारा इल्म हासिल करें, फर्ज का इल्म भी वही हासिल करें और हराम का इल्म भी वही हासिल करें, और जो है ना वो फिर उसके बाद जैसे घुमा फिरा करके जिस तरह से भी हमें बताना है वो हमें बता दे। नहीं, ये तो हर मुसलमान मर्द और औरत ने हासिल करना है। ठीक है, तो इसके लिए ना अल्लाह ताला ने हमेशा इस उम्मत के अंदर ये जमात रखी हुई है कि जहां से कि आप फराइज का इल्म हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी उस उम्मत के अंदर से, नबी अलैहि सलाम का ये वादा है, अल्लाह ताला ने उनसे ये वादा करवाया है। बहरहाल, तो ये तो बात उसके बारे में चल रही थी, गुलू के बारे में, आगे के जो हम थोड़ा पढ़ के इसको कोशिश करते हैं आज खत्म कर लें कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम को और बिलखुसूस हजरत खातमुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की हजारों लाखों चीज़ों का इल्म अता फरमाया है, और सब फरिश्तों और अम्बिया से ज्यादा इल्म अता फरमाया है, लेकिन जाहिर है कि खुदा ताला के बराबर किसी का इल्म नहीं, ना हो सकता है, वरना फिर ये रसूल की तअज़ीम का वो गुलू होगा जो ईसाइयों ने इख्तियार किया कि रसूल को खुदा के बराबर ठहरा दिया, इसी का नाम शिर्क है, नाउज़ बिल्लाही मिन्हू। यहाँ तक पहली आयत का बयान था जिसमें अल्लाह जल्ला शानों की सिफत इल्म की खसूसियात का बयान है कि वो हर गैब व शहादत और हर जर्रा जर्रा कायनात पर हावी है, हर जर्रा जर्रा कायनात पर हावी है। दूसरी आयत में इसी तरह हक तआला की सिफत कुदरत और उसके कादर मुतलक होने का बयान है जो उसी की जात के साथ मखसूस है। ठीक है, यानी अब इल्म की बात मुकम्मल हुई, अब कुदरत की बात आ रही है। ठीक है, यानी नॉलेज डिस्कशन यहाँ पे अब इन्होंने कंप्लीट करके अब जो है वो एक्शन की डिस्कशन शुरू करी। ठीक है, और ये हमारे नॉलेज और हमारे एक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह के नॉलेज और अल्लाह के एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअली पुटिंग दैट नॉलेज इन प्रैक्टिस, तो अल्लाह ताला की कुदरत जो होती है ना वो अपने इल्म के ऊपर, फिर अल्लाह ताला की ये अमल कैसे होता है, वो ऐसा अमल है कि हर चीज को अल्लाह ताला जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फरमाया कि हुवल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैली, कि वो वही जात है कि जो कि तुम्हें रात में तुम्हारी रूह को एक गुना कब्ज कर लेता है, ये तो वफाकुम यानी तुम्हें वफात देता है, लेकिन ये वफात जो है वो एक गुना फरमाई, ठीक है, कि एक गुना यानी 100% नहीं बल्कि पोर्शन ऑफ रूह को तुम्हारी जो है वो कब्ज कर लेता है, ये टेम्पोरारीली कब्ज कर लेता है। क्या कह रही है ये वीडियो, फिर से कैसे सुने? अच्छा रिकॉर्डिंग है, जवाब उन्होंने जवाब भी दे दिया। अच्छा तो वयअलमु मा जरहतुम बिन नहारी, और वो इल्म रखता है कि जो तुम दिन के अंदर, नहार जो है वो दिन। अच्छा इंशाल्लाह मुझे असल में जो स्क्रीन शेयर हुई भी होती है वो नजर नहीं आ रही है, इंशाल्लाह उसका इंतजाम कर रहे हैं ये सारे जिसके सामने स्क्रीन शेयर्ड भी जो है वो भी डिस्प्ले हो सके, लेकिन इस वक्त नहीं है डिस्प्ले रूम के सामने, लेकिन शायद इसका गुमान है कि इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हुई भी होगी उसके अंदर आयत भी डिस्प्ले हुई भी होगी। तो नेक्स्ट पेज, हाँ, तो इसमें जो आयत डिस्प्ले हुई भी है तो आपके सामने फिर अल्फाज और फिर नीचे उनका तर्जुमा ये भी है, जिससे आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह फायदा होगा। एक भाई ने बना करके भेजा, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए ख़ैर अता फरमाए इसके। तो वयअलमु मा जरहतुम मिन नहारी, तो जरहतुम का मतलब क्या कि तुम दिन के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ तुम करते हो, ठीक है, तुम फिजिकली करते हो, जैसे जराहत, जराहत जो है वो सर्जरी को उर्दू के अंदर कहा जाता है, इल्म जराहत, ठीक है, तो सर्जरी के अंदर क्या करते हैं आप, फिजिकली काट पीट कर रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है, आप खुद जो है वो उसके अंदर तसर्रुफ कर रहे होते हैं, तो उसको सर्जरी कहा जाता है, और उसके लिए अरबी का लफ्ज जराहा, ठीक है। तो ये यानी यहाँ पे ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ कि दिन के अंदर कुछ तुम जो फिजिकल एक्शंस करते हो, ठीक है, मा जराहतुम बिन नहारी, तो वो इस बात का इल्म रखता है। सुम्मा यब आसुकुम फीही लियुक्ता अजल मुसम्मा, फिर वो इस नए दिन में तुम्हें उठाता है, यब आसु बासा यब आसु, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठाया, ठीक है, हुवल्लज़ी बासा फी फिल उम्मीजीन, ठीक है, तो बासा का लफ्ज का मतलब क्या होता है, उठाना, ठीक है। अब ये उठाने से मुराद क्या कि फिजिकली खड़ा कर देना जरूरी नहीं है इसका मतलब, बल्कि किसी काम पे उठा देना, किसी काम के ऊपर तैयार कर देना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत के काम पे मुतय्यन वो कर दिया, मुकर्रर कर दिया, तो उसके लिए भी बासा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसी तरीके से नींद से उठाया, तो अगर आप जाग जाएं तो ये भी बासा या बासु कहलाएगा, उठा देना, ठीक है। तो अब तुम उठ जाते हो किसके अंदर, दिन के अंदर, नहार के अंदर, सुम्मा यबअसुकुम फी, वो तुम्हें उठा देता है नहार के अंदर, दिन के अंदर, क्यों उठा देता है, ली ली से वजह बयान की जाती है, युक्दा अजल मुसम्मा, कि तुम्हारी उम्र की मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाए, तुम अपनी मेयारे यानी मियाद मुकर्रर जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको तुम पूरा कर लो, अखवा या अखवा क्या कहते हैं, हाँ ये इसका मजहूल का सीगा है, युखवा के मुकम्मल कर लेना, ठीक है, या तय कर लेना, मुकम्मल कर लेना, किसी जैसे आप सफर को तय कर लेते हैं उसी तरह से जिंदगी के सफर को तय कर लो जिस वक्त तक तुम्हारे लिए डिसाइडेड है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, यहाँ तक फिर उसके बाद उसकी जो मारूफ मसाइल लिखे हुए हैं कि यानी अल्लाह ताला हर रात में तुम्हारी रूह को एक गुना कब्ज कर लेता है और फिर सुबह को जगा कर उठा देता है ताकि तुम्हारी मुकर्रर उम्र पूरी कर दे, और फिर दिन भर में तुम जो कुछ करते रहते हो वो सब उसके इल्म में है, ये अल्लाह ताला ही की कुदरत कामिला है कि इंसान के जीने मरने और मरकर दोबारा जिंदा होने का एक नमूना हर रोज उसके सामने आता रहता है, ठीक है ना, यानी जीने मरने और फिर उठ करके दोबारा काम करना, ये जो कि यानी रोजाना अल्लाह ताला हमें इसका मुशाहिदा करवा रहे हैं ना, हदीस में नींद को मौत का भाई फरमाया है, ठीक है, اور یہ حقیقت ہے کہ نیند انسان کے تمام قوا کو یعنی قوتوں کو ایسا ہی معطل کر دیتی ہے جیسے موت. ٹھیک ہے, اس آیت میں حق تعالیٰ نے نیند اور پھر اس کے بعد بیداری کی مثال پیش فرما کر انسان کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہر رات اور ہر صبح میں ہر شخص شخصی طور پر مر کر یعنی انڈیویجولی مر کر جینے کی ایک مثال کا مشاہدہ کرتا ہے, مر کر دوبارہ جینے کی ایک مثال کا مشاہدہ کرتا ہے, اسی طرح پورے عالم کی اجتماعی موت اور پھر اجتماعی زندگی کو بھی سمجھ لو جس کو قیامت کہا جاتا ہے. جو ذات اس پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ سے وہ بھی مستبعد نہیں ہے, یعنی وہ بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر ہر بندے کو وہ روزانہ اس طریقے سے موت دے کر کے پھر زندگی دیتا ہے. تو بھائی جب سب کو انڈیویجولی وہ یہ کام کرتا ہے تو سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا, دیکھیں عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں ہماری, ٹھیک ہے, ٹریگر کر رہے ہیں, سٹیمولیٹ کر رہے ہیں ہماری عقل کو. تو اسی لیے آخر آیت میں فرمایا ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, یعنی پھر تم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پھر وہ تم کو جتلائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ینبئکم ینبئو کہ وہ تمہیں خبر دے گا, وہ تمہیں اطلاع دے گا تم کیا عمل کیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ اعمال کا حساب ہوگا, پھر اس پر جزا اور سزا ہوگی. ٹھیک ہے, ینبئکم یعنی بتایا جائے گا, اور بتایا جائے گا مطلب خالی ہے نہیں کہ بس آپ کو نیوز دے دی گئی بس, نہیں, بلکہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اب پوچھا بھی جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا اور یہ کام تم نے کیوں کیا تھا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا تھا جو کہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ ریڈ کارپیٹ ویلکم نہیں ہوگی کہ اب حضور اٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ صاحبہ اٹھ گئی ہیں, اتنا لمبا جو ہے وہ قبر میں نیند سو کر کے اب ان کے سامنے ایک ریڈ کارپیٹ بچھائی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا چلیے آنٹی جنت میں چلیے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ جنت میں جانا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو ہے وہ حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا جس میں ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا, اور جس جس درجے کا پوچھا جائے گا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا, پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. تیسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر ایک قوت قاہرہ رکھتا ہے, جب تک اس کو ان کا زندہ رکھنا منظور ہوتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یاد نہیں آ رہا 133 یا 130 فرشتے یا اس کے لگ بھگ کوئی نمبر ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر متعین ہے اس کی حفاظت کے لیے خالی. ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ فرشتے اس کی حفاظت نہ کریں نا تو جنات جو ہیں وہ اس کی بوٹیاں نوچ لیں, یعنی جنات اس کو زندہ نہ رہنے دیں اور اتنا بری طرح اس کو ماریں کہ گویا اس کی بوٹی بوٹی الگ کر کے اس کو نوچ لیں اس کے جسم میں سے. ٹھیک ہے, یہ فرشتے ہیں جو کہ جنات سے ہر وقت ہماری حفاظت فرماتے ہیں, یہ ہر وقت ہمارے ساتھ متعین رہتے ہیں, یہ حفاظت والے فرشتے ہیں, یہ وہ نیکی کا خیال ڈالنے والے فرشتے نہیں ہیں. ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ فرشتوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے فرشتے جو کہ یعنی ہماری فزیکل بینگ کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی کی مجال نہیں جو اس کو نقصان پہنچائے, اور جب کسی بندے کا مقررہ وقت عمر کا پورا ہو جاتا ہے تو یہی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب اس کی موت کے اسباب فراہم کرنے میں ذرا کمی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر مر کر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا, یعنی یہ جو موت کے فرشتے ہیں تو اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ چینج آف ڈیوٹیز ہو جاتی ہے, خالی چینج آف ٹیم نہیں ہوتی بلکہ چینج آف ڈیوٹی ہو جاتی ہے. پہلے وہ وہی فرشتے جو ہے وہ حفاظت میں مقرر تھے, اب جو ہے وہی فرشتے جو ہے موت کا سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری توانائی کا سبب بن رہی ہوتی ہے, لیکن کسی دن اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کو ہماری موت کا سبب بنا دیتے ہیں. ठीक है। गाड़ी, गाड़ी जो होती है वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रोजाना काम आती है। किसी दिन अल्लाह ताला ने एक्सीडेंट जो है वो ऐसा मुकद्दर में लिखा हुआ होता है कि वही गाड़ी का सफर जो होता है वो हमारी मौत का सबब बन जाता है। कोई नई गाड़ी तो नहीं आती ना उसके लिए कि अब जो है ना वो मौत के लिए कोई नई गाड़ी आएगी जब वो ड्राइव करके लेके जाएंगे तो, बल्कि मतलब हो सकता है कभी कोई नई गाड़ी आ जाए, किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो वो उसकी मौत का सबब बन जाए, लेकिन आमतौर पर जिस गाड़ी में वो रोजाना जाते हैं वही उसकी मौत का सबब बन जाती है। ठीक है, तो फरिश्तों का मामला तो ऐसा ही लगता है कि वही फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से मौत का सबब बन जाते हैं, और अब उसकी मौत के असबाब फराहम करने में जरा कमी नहीं करते। यानी अब जो है वो या तो कोई वायरस इसके अंदर दाखिल करने का काम भी जो होते हैं वो फिर वो फरिश्ते ही कर रहे होते हैं, या फिर उसको किसी ऐसे मुकाम तक गाइड करने का, हाँ अभी उधर जाओ जहाँ पे तुम्हारे लिए अभी मलिकुल मौत ने आकर के तुम्हारी जान कब्ज करनी है। क्योंकि जान कब्ज करने के लिए जो है ना वो मलिकुल मौत ही मुकर्रर है, एक ही फरिश्ता है। अब सोचें कि कितनी मखलूक अल्लाह ताला, अच्छा सिर्फ इंसानों की जान नहीं बल्कि अल्लाह की हर मखलूक की जान, चाहे वो चूंटी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी मखलूक क्या ना हो, उसके अंदर से जो उसकी रूह होती है उसको निकालने का काम अल्लाह ताला ने एक मलिकुल मौत के जिम्मे लगाया। अब तसव्वुर करें कितना यानी तेज रफ्तारी होगी उनके अंदर, ठीक है, कि वो ऐसे जान कब्ज करते हैं और उनके अंदर काम के अंदर कोई डिले नहीं होता। ठीक है, या ये भी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो जो आलम अरवाह है ना, तो उसके अंदर जो टाइम स्पैन है वो इतना एक्सपैंडेड है कि जिसके अंदर के उनके सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हमारे एतबार से एक लम्हा गुजरा होता है, लेकिन हम उस एक लम्हे के अंदर कोई काम भी नहीं कर सकते, लेकिन वो उस एक लम्हे के अंदर इतने सारे काम कर लेते हैं कि इतनी सारी मखलूक की जान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम स्पैन अलग है। ठीक है, जैसे कयामत का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर होगा या 1,000 साल के बराबर होगा, तो भाई हमारा एक दिन और उनका 50,000 दिन, 50,000 साल का दिन, ये कैसे भाई? वो एक अलग टाइम स्पैन है, एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस है। उसी तरह रूहानी दुनिया के अंदर जो फरिश्तों वाला वाली दुनिया है वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो बहरहाल ये जो यानी गार्जियन एंजल्स होते हैं ना, ये असबाबे मौत मुहैया करते हैं, जान निकालने का काम तो मलिकुल मौत ही करते हैं। ठीक है, अच्छा जरा फिर मरकर ही मामला खत्म नहीं हो जाता बल्कि रुद्दू इलल्लाह यानी दोबारा जिंदा होकर फिर अल्लाह ताला के पास हाजिर किए जाएंगे। तो इस जगह अहकम उस जगह अहकमुल हाकिमीन के सामने पेशी और उम्र भर के हिसाब का जब ख्याल किया जाए तो किसकी मजाल है जो पूरा उतर सके और अजाब से बच निकले। इसीलिए इसके साथ ही इरशाद फरमाया, इल्लाह मौलाहुमुल हक, यानी अल्लाह ताला सिर्फ हाकिम और अहकमुल हाकिमीन ही नहीं है, वो अपने बंदों के मौला भी हैं जो हर मौके पर उनकी मदद भी करते हैं, जैसे आखिरत में और वहां पर हिसाब किताब में अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों की मदद करेंगे, ईमान वाले बंदों की, जैसे दूसरे मुकामात से कंफर्म बात है ईमान वाले बंदों की अल्लाह ताला मदद करेंगे। तो जिस तरह वहां मदद करेंगे उसी तरह इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करते हैं। ठीक है, क्या मतलब कि अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो हमारे हाल पे छोड़ा हुआ है हमें, तुम जो करो सो करो, मैं तो बाद में देखूंगा तुम्हें, या बाद में तुमसे निपटूंगा, या बाद में तुम्हें नवाजूंगा, अभी तो बस तुम अपने यू आर ऑन योर ओन, ऐसा नहीं है। इवन इस दुनिया की जिंदगी के अंदर भी अल्लाह ताला हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और अपनी इस इन्वॉल्वमेंट का तस्करा जो है वो अपने कलाम में बताते, खुद हमें बताते रहते हैं कि मैं देखो मैंने तुम्हें तनहा नहीं छोड़ा हुआ है, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा हुआ है। जैसे एक आयत जो हमारे मशायख हमेशा बयान करते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ठीक है, तो इस आयत में क्या फरमा रहे हैं, जो हमारे रास्ते मुजाहिदा करता है, क्या मतलब भाई कब्र में बैठ के मुजाहिदा करता है? नहीं, इस दुनिया की जिंदगी में जो हमारे रास्ते में कदम उठाता है हमारी रजा की खातिर, हमारे नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो भी कदम उठाता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसी वक्त उसको रेस्पॉन्ड करते हैं और उसके लिए रास्ते हमवार कर देते हैं अपने अपने तक पहुंचने के। ठीक है, अल्लाह ताला इन्वॉल्व है, अल्लाह ताला की ये जो विलायत है, अल्लाह ताला की जो मदद है, ये इस दुनिया की जिंदगी में हमें हासिल है, है, लेकिन इससे फायदा उठाने वाले वही होते हैं जो कि अल्लाह ताला के नबी पर ईमान लाते हैं, उनकी मान करके चलने की नीयत और इरादा करते हैं। इसके बाद फरमाया अल्लाह लहुल हुक्म, कि बेशक फैसला और हुक्म उसी का है। यहाँ ये ख्याल हो सकता था कि एक ज़ात यानी एक अल्लाह की ज़ात और अरबों इंसानों की पूरी पूरी उम्रों का हिसाब निपटेगा, ये कैसे होगा भाई। इसलिए इसके बाद फरमाया वह हुआ असरउल हासिबीन, यानी अल्लाह ताला के कामों को अपने कामों पर कयास करना जहालत है, वो बहुत जल्द हिसाब पूरा फरमा लेंगे। ठीक है, क्यों? वही बात कि वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है ना, फरिश्ता जो है यानी तस्वुर करें ना, देखें इस इनसे कितना फायदा होता है जो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें पहुंचा है, समझना आसान हो जाता है कि अगर हमने ये बात नबी अलैहिस्सलाम की मान ली कि एक एक मलिकुल मौत सारी मखलूक की जान निकालते हैं, तो भाई कितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, और वो हर हर लम्हे करोड़ों अरबों खरबों मखलूक की जो है वो जान निकालने के, अब जान निकालना यानी इट्स नॉट जस्ट के जान निकालने की बात है, वो तो एक फरिश्ता जान निकालने पे मामूर है, लेकिन और भी तो बहुत सारे काम है, तो खाली ये नहीं कि भाई मौत मौत की बात किए जा रहे हैं, खामखा की डराए चले जा रहे हैं हमें, नहीं हम तो खाली एक मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे, बस मौत जान निकालने वाली मिसाल। तो एक फरिश्ता जब इतनी तेजी के साथ जो है वो एक काम कर सकता है, तो जिसने उस फरिश्ते को बनाया और जिसने उस फरिश्ते को ये कुदरत दी, ये इख्तियार दिया या ये ताकत दी कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है, तो वो खुद कितना तेजी से काम कर सकता होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कोई हैरान परेशान होने की बात नहीं है। तो कुरान मजीद में फिर इन सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है कि वह हुआ असरउल हासिबी, बहुत जल्द हिसाब पूरा फरमा देंगे, बहुत तेज हिसाब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आयात थी 62 तक, ये काफी लंबे अरसे से हम इसको पढ़ रहे थे, लेकिन आज बिलाखिर अलहमदुल्ला पढ़ के हमने क्या मार परेशान मुकम्मल किए। अगली क्लास के अंदर फिर हम आयात नंबर 63 और 64 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।